الحمد لله وكفى وسلام على عباده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون. إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. تو اس کلاس میں ہم سورۃ الانبیاء کی تفسیر پڑھ رہے ہیں اور قرآن کی جلد نمبر 6 سے، اور ان آیات جو کہ شیئر اسکرین کے اوپر آپ کے سامنے نمبرز لکھے ہوئے ہیں 92 سے 105 تک، تو ان کا ترجمہ اور خلاصہ تفسیر ہم نے پڑھ لیا تھا، معروف مسائل بھی ہم نے شروع کیے تھے، اور ہم اس میں اس مقام پر تھے کہ جس میں حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون کی تفسیر بیان کروائی تھی، معروف مسائل بیان کروائے تھے. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا نا کہ یاجوج اور ماجوج جب کھول دیے جائیں گے نا، اس وقت تک جو ہے وہ کوئی ہلاک شدہ قوم اپنے بستی میں واپس نہیں آ سکے گی. ٹھیک ہے، اب ہم نے اس میں یہ پڑھا تھا کہ یہ جو یاجوج اور ماجوج کے کھلنے کا واقعہ ہے کہ جب وہ اپنے جگہ سے نکل آئیں گے اور بہت بڑی تعداد میں انسانوں کے درمیان ظاہر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، انسانوں کے درمیان نکل آئیں گے تو وہ شکل ایسی ہوگی کہ جیسے کہ ہر اونچائی سے جو ہے وہ کوئی چیز جیسے یعنی سیلاب کی طرح سے جو ہے نا وہ اتر رہی ہے. ٹھیک ہے، پھسلتے ہوئے اونچائی سے نیچے کی طرف اتنا تیزی سے آئیں گے. یعنی جیسے آپ نے اگر کبھی دیکھا ہو کہ کسی سنو ٹاپڈ ماؤنٹینز جو ہوتے ہیں نا، برف پوش پہاڑ، تو ان کے اوپر یہ اسکیئنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بڑی بڑی جو ان کے نا وہ پیر کے اندر لگا کر کے تو وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اسکیز کہتے ہیں اس کو، تو اس سے جو ہے نا وہ اوپر سے جو نیچے لوگ آتے ہیں نا اس کو پہن کر کے، تو بڑی تیزی کے ساتھ نیچے آتے ہیں. یہ چلنے میں وہ رفتار نہیں ہوتی، اگر ایون دوڑنے میں بھی وہ رفتار نہیں ہوتی، اسکیئنگ کی رفتار جو ہے وہ دوڑنے سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے پھسلنے میں، کیونکہ اسکیئنگ جو ہوتا ہے وہ پھسلنے کی شکل ہوتی ہے، تو پھسلنے میں جو ہے نا وہ رفتار تیز ہو جاتی ہے، اور جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ پھسل کر کے نیچے آ رہے ہوں تو گویا کہ ایک سیلابی ریلا آتا ہوا نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، ایک ذرا پنکھا سلو کر دیں. تو ایک سیلابی ریلے کی طرح سے وہ اتریں گے. تو حضرت نے یہاں پہ پھر اس کی تفسیر میں لکھا تھا کہ ایک حدیث مبارکہ نقل کری تھی کہ صحابہ آپس میں ایک دن مذاکرہ کر رہے تھے، ڈسکشنز کر رہے تھے ان چیزوں کا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے سنی تھی. صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طالب علم بھی تھے، اسٹوڈنٹس بھی تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ٹیچر بھی تھے، معلم. ٹھیک ہے نا، صحابہ اسٹوڈنٹس بھی تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ٹیچر تھے، اور ساتھ ہی ساتھ صحابہ جو ہے نا وہ مریض بھی تھے، مریض. ٹھیک ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے طبیب تھے، طبیب، ڈاکٹر. ٹھیک ہے، حکیم، جیسے وہ علاج کرنے والا حکیم جو ہوتا ہے. تو یہ ساری ریلیشن شپ جو تھی نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے درمیان تھیں، ڈاکٹر پیشنٹ ریلیشن شپ بھی تھی اور اسٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشن شپ بھی تھی. ٹھیک ہے، تو اسٹوڈنٹ کا کیا کام ہوتا ہے کہ ٹیچر سے جو بات سنے تو اس کو جو ہے وہ سمجھے اور اپنے دماغ میں بٹھائے، ہے نا، اس کی تکرار کرے، आपस में एक दूसरे के साथ, आप दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी डिस्कशन करें, तब वो बात ज्यादा खुल करके समझ में आती है और वो याद रखनी भी आसान हो जाती है। तो सहाबा तो बेहतरीन स्टूडेंट्स थे, तो वो जरूर से तकरार किया करते थे आपस में। तो वही एक तरह से आपस में एक दिन बैठ के तकरार कर रहे थे अपने सबक का, तो सबक की तकरार कर रहे थे, तो नबी रसूल तशरीफ लाए और पूछा कि भाई कि क्या तुम्हारे दरमियान अभी ये मुजाकरा जारी है, यानी क्या मुजाकरा जारी है तुम्हारे दरमियान, क्या बात कर रहे हो तुम? तो उन्होंने अर्ज किया कि क़यामत का जिक्र कर रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी मजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इल्म देना शुरू कर दिया, ठीक है, अनसोलिसिटेड। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा नहीं था कि अब आप हमें मजीद बता दीजिए क़यामत के बारे में, नहीं, पूछने पर तो जवाब दिया जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ पूछने पर जवाब नहीं दिया करते थे बल्कि बगैर पूछे भी बताया करते थे, ठीक है। तो एक आलिम के लिए या एक मुअल्लिम के लिए ये इंतजार करना कि नहीं कोई पूछेगा तब बताऊंगा, नहीं, बल्कि बगैर पूछे भी बताना, ये भी मुअल्लिम का काम है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक 10 अलामतें उससे पहले जाहिर ना हो जाए, और इन 10 अलामतों के अंदर याजूज और माजूज का भी जिक्र फरमाया। पिछली क्लास में हमने इन तमाम 10 अलामतों का तस्किरा कर लिया था जिनको अलामात कुबरा कहते हैं क़यामत की ना। फिर आगे फरमाया था कि जी आयत में याजूज, यहाँ पे हमने क्लास को रोक दिया था कि आयत में याजूज माजूज के लिए लफ्ज फुतिहत यानी खोलना इस्तेमाल फरमाया गया, जिसके जाहिरी मानी यही है, जाहिरी मानी यानी अपेरेंट ऑब्वियस है ना, जो चीज आपको सुन करके सामने नजर आती है उसको जाहिरी मानी कहते हैं, और एक होता है बातिनी मानी, छुपे हुए मानी, ठीक है ना। तो ये भी मुमकिन होता है कि किसी चीज के जाहिरी मानी कुछ और हैं और बातिनी मानी कुछ और है, और ऐसा भी होता है कि नहीं बस जो जाहिरी मानी है वही बातिनी मानी भी, वही असल मानी भी है, ठीक है। तो जाहिरी मानी इस फुतहत के क्या हुए कि उस वक्त से पहले वो किसी बंदिश और रुकावट में रहेंगे, ठीक है, कोई चीज उनको रोकी हुई होगी बाहर निकलने से। क़ुर्बे क़यामत के वक्त जब अल्लाह ताला को उनका निकलना मंजूर होगा तो ये बंदिश रास्ते से हटा दी जाएगी, और ज़ाहिर कुरान करीम से यानी कुरान करीम के ये जो आयत है इज़ाफ़त याजूज माजूज, तो इस कुरान करीम के आयत के ज़ाहिर से ये है कि ये रुकावट सद ज़ुल्क़रनैन, सद कहते हैं दीवार को, ठीक है, रुकावट को, दीवार को। और ज़ुल्क़रनैन कौन थे? ये एक बादशाह थे जो बहुत नेक बादशाह थे। इनका जो जमाना है ना दुनिया में, ये जमाना वही था जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जमाना था, ठीक है। तो इन ज़ुल्क़रनैन का जिक्र जो है ना ये है सूरह कहफ़ के आखिर के अंदर, ठीक है। सूरह कहफ़ के अंदर अल्लाह ताला ने 5 कहानियां बयान करी, 5 किस्से। उनमें से पहला किस्सा असहाब कहफ का किस्सा है, ठीक है। दूसरा किस्सा कौन सा है अगर आप मेरी मदद फरमाए, वो जो दो बागों वाले शख्स का है ना, साहिबुल जन्नतैन, उसके पास दो बाग थे है ना, और उसका एक नेक साथी था जो उसके साथ साथ चल रहा था, ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तो ये दूसरा किस्सा है सूरह कहफ के अंदर। तीसरा किस्सा कौन सा है सूरह कहफ का, तीसरा किस्सा कौन सा है? तीसरा किस्सा जो है ना ये जबरदस्त, ये सबसे छोटा किस्सा है सूरह कहफ में, ठीक है, लेकिन ये सूरह कहफ के दरमियान में है। कौन सा किस्सा है? आदम अलैहिस्सलाम और इबलीस का किस्सा, जी ये है तीसरा किस्सा, ठीक है ना। चौथा किस्सा मूसा और खिजर अलैहिस्सलाम का किस्सा है, और पांचवा किस्सा जो है वो ज़ुल्क़रनैन का किस्सा है, ठीक है। अच्छा, एक आपके सामने शायद वो बात नहीं आई है लेकिन मर्दों की क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था बहुत तफसील से कुछ महीनों पहले, तो आपसे भी चले जरा उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बात निकल आई है तो, कि सूरह कहफ का दरमियानी किस्सा कौन सा हुआ? 5 में से दरमियानी तीसरा बनता है ना, वो है आदम अलैहिस्सलाम और इबलीस का। अब ये बताएं कि पूरे कुरान मजीद के अंदर अगर आप देखें तो सूरह कहफ कहां पर है? पूरे कुरान मजीद में सूरह कहफ कहां है? बीच में है, बिल्कुल मिडल में है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो पूरे कुरान मजीद में सूरह कहफ बिल्कुल मिडल में है, और सूरह कहफ के मिडल में क्या चीज है? आदम अलैहिस्सलाम और इबलीस का किस्सा, राइट। तो थोड़ी सी अगर हम अपनी अकल इस्तेमाल करें तो क्या पता चलता है कि पूरे कुरान मजीद का जो मिड है ना, जो सेंट्रल आइडिया है, जो बिल्कुल बुनियादी वाकया है जिससे कि सबसे ज्यादा बुनियाद हमें मिलती है ना, यानी कुरान मजीद किताब हिदायत है ना, तो इस किताब हिदायत का सबसे सेंटर मोस्ट आइडिया क्या है? वो है बंदगी, गंदगी नहीं बल्कि बंदगी। और ये बंदगी अल्लाह ताला हमें सिखाते हैं आदम और इबलीस के वाकये से, ठीक है ना। यानी एक अल्लाह का बंदा और दूसरा अल्लाह ताला का दोस्त दुश्मन, ठीक है ना। अब ये दोस्त और दुश्मन और इसके अंदर गंदगी और बंदगी, बंदगी और गंदगी, ठीक है। ये जो है ना, ये है हमारी, यानी हमारी जिंदगी का सेंट्रल आइडिया यही है। यही अल्लाह ताला ने हमें दुनिया के अंदर, दुनिया की जिंदगी में भेजा ही इसलिए है, ठीक है। तो बहरहाल, तो पांचवा किस्सा ज़ुल्करनैन का किस्सा है सूरह कहफ के अंदर, ठीक है। तो वो मजीद उसकी तफसील हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सूरह कहफ की तफसीर हमने बड़ों में भी पढ़ाई है, पढ़ाई है कि नहीं पढ़ाई है, बच्चों में तो पढ़ाई है। 2 साल लगा करके हमने बच्चों की क्लास एक होती है हमारी सैटरडे को, जिन लोगों को नहीं पता है उनके मालूम के लिए ये आज बता रहे हैं कि 1 घंटे की क्लास होती है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजकल हफ्ते के दिन बच्चों में, ठीक है। तो अगर आप में से किसी के बच्चे हैं जो कि अभी उसका हिस्सा नहीं है तो वो हमें एक व्हाट्सएप मैसेज करके उस क्लास के अंदर अपने बच्चों को ऐड करवा सकते हैं। तो सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू करने से पहले जो है ना, उसके अंदर हमने सूरह कहफ की तफसीर बड़ी तफसील के साथ पढ़ाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी सारी रिकॉर्डिंग्स भी वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं। तो ज़ुल्करनैन के वाक्य के अंदर याजूज और माजूज का तज़किरा है कि उन्होंने एक दीवार बना दी थी कि जिसके पीछे जो है ना फिर याजूज और माजूज का कबीला रहता था, ठीक है, ताकि वो लोग जो है ना वो इस तरफ ना आ सकें, लोगों को बर्बाद करने के लिए, मारने के लिए, उनकी चीजें लूटने के लिए। वो बार बार अपने इलाके से निकल करके ना वो यहाँ पे आते रहते थे और लोगों को तंग करते रहते थे। तो उन्होंने ये दीवार बना दी इन लोगों की रिक्वेस्ट पर। तो फरमाते हैं कि जाहिर कुरान से ये है कि ये जाहिर कुरान करीम से यह है कि ये रुकावट सद्दे ज़ुल्करनैन है जो कुर्ब क़यामत में ख़त्म हो जाएगी, ख्वाह इससे पहले भी वो टूट चुकी हो, मगर उनके लिए बिल्कुल रास्ता हमवार उसी वक्त होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हजरत ने कुर्ब क़यामत का लफ्ज़ तो इस्तेमाल किया है, लेकिन कुर्ब क़यामत से क्या मुराद है? जैसे कि पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा दुनिया में आ जाना ये भी क़यामत की अलामत में से है, और मैं और क़यामत ऐसे हैं जैसे कि ये 2 उंगलियां, उंगलियां जैसे जुड़ी हुई होती है ना आपस में, उसी तरह मेरा दुनिया में आना और क़यामत का दुनिया में आना ये इतना करीब है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत ही क़ुर्ब क़यामत की एक निशानी है, ठीक है। तो भाई क़ुर्ब क़यामत जो है ना, ये तो फिर काफी इसको आप यानी मुख्तलिफ तरीकों से इंटरप्रेट कर सकते हैं। 1400 साल गुजर गए, अभी तक तो नहीं आई क़यामत। 1400 साल अल्लाह ताला के स्केल में 1400 साल की कोई अहमियत नहीं है, हमारे नजदीक 1400 साल बहुत बड़ा पीरियड है ना, अल्लाह ताला के स्केल में तो ये बहुत छोटा सा पीरियड है। तो कुर्ब क़यामत कैन बी यानी इसके ऊपर आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि यानी याजूज और माजूज जो हैं अभी तक कुछ, जैसे कि उमूमी तौर पर ये है ना कि ये अभी तक तो नहीं खुले, लेकिन एक ये भी कहा जा सकता है कि नहीं, ये खुल चुके हैं और ये बहुत पहले ही खुल चुके हैं, ठीक है। उसकी एक अकली दलील अगर आप दें तो वो एक नकली दलील से मिलती है। नकली दलील का मतलब होता है कुरान से दलील लेना या हदीस मुबारक से दलील लेना, ठीक है। तो हदीस मुबारक से एक हमें वाकया पता चलता है कि नबी अलैहिस्सलाम एक दफा हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ घर में थे ना रात के वक्त, तो एकदम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उठ बैठे और इस तरह से फरमाया कि वैलुल लिल अरब, अरब के लिए बर्बादी है, अरब अरब बर्बाद हो गए, ठीक है, अरब बर्बाद हो गए, पूरी इंसानियत बर्बाद नहीं होगी, अरब बर्बाद हो गए का लफ्ज़ इस्तेमाल किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, वैलुल लिल अरब, ठीक है, बर्बादी है अरब के लिए। अच्छा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बात फरमाई कि कि ये क्या क्या मतलब बर्बादी है, क्या हुआ है कि जिसकी वजह से अरब की बर्बादी है, कि याजूज और माजूज जो है ना उनकी जो दीवार थी ज़ुल्करनैन की बनाई हुई सद दीवार, उसके अंदर होल पैदा हो गया है, होल बन गया है। कितना बड़ा होल बन गया है, शहादत की उंगली और अंगूठे को अगर आप आपस में जोड़ दें तो एक रिंग बन जाती है ना, इतना बड़ा होल बन चुका है। ठीक है, अब बशायद मुख्तलिफ दलाइल की रोशनी में हमें बताते हैं कि ये होल जो है ना वो बना कैसे, कि याजूज और माजूज जो है ना ये कोशिश करते रहते थे दीवार को तोड़ने की, कोशिश करते रहते थे लेकिन उनसे टूटती नहीं थी, जो भी उसकी तफसीलात हैं। कुछ कहते हैं कि नहीं वो ज़ईफ़ हदीसों से साबित नहीं है और वो कन्फर्म नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, वो सारी अलग तफसीलात हैं, लेकिन ये कोशिश करते रहते हैं अपनी दीवार को तोड़ने की, ठीक है, लेकिन वो टूट नहीं पाती, उसमें होल नहीं बन पाता। ऑल द वे थ्रू जो होल होता है ना, एक तरफ से आपने जैसे किसी फॉर एग्जाम्पल आपके कमरे की दीवार है, आपने उसको तोड़ना शुरू कर दिया, ठीक है, तो थोड़ा सा तो होल उसमें बन जाएगा लेकिन आपको दूसरी तरफ नजर आना तो नहीं शुरू हो जाएगा ना, अनलेस कि आप इतना उसको तोड़ें कि जिससे कि दूसरी तरफ कभी नजर आना शुरू हो जाए। ठीक है, तो जाहिर से ऐसी लगता है इस हदीस के कि इतना बड़ा होल आप सल्लम की जिंदगी में बन चुका कि जिससे कि थ्रू नजर आना शुरू हो गया, पार नजर आना शुरू हो गया उस दीवार के। ठीक है, तो अब अगर ये याजूज और माजूज अपने दीवार तोड़ने की कोशिश करते ही रहते थे तो भाई जब उन्होंने एक होल बना लिया तो अब इस होल को मजीद एक्सपैंड ही करना था ना, खाली उनको मजीद उसको है ना मजीद यानी बड़ा ही करना था उस होल को, तो वो करते गए करते गए करते गए, तो ऐन मुमकिन है कि चंद साल या चंद सौ साल भी अगर उनको लगे होंगे तो फिर ये दीवार जो है ना वो टूट के गिर चुकी, ये दीवार टूट के गिर चुकी, खत्म हो गई ये दीवार, पहले ही खत्म हो चुकी है यानी। ठीक है, वो इसके ऊपर ना कुछ लोगों ने रिसर्च करी मुख्तलिफ चीजों को सामने रख के कि जी याजूज और माजूज कहाँ पर हैं, किस जगह पे मुमकिन है कि ये रहते होंगे, तो वो इस नतीजे पे पहुंचे कि जी ये जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है ना, जॉर्जिया खुसूसन, ब्लैक सी और कैस्पियन सी वगैरह का जो एरिया है, तो ये है दुनिया का शुमाली एरिया। ठीक है, यानी मिडल ईस्ट जो है ना, मिडल ईस्ट मशरक़ वस्ता, ये बेसिकली दुनिया का मरकज है। अगर आप दीनी एतबार से देखें, वही की रोशनी में देखें, तो मशरक़ वस्ता ये असल दुनिया है ना, सारे अंबिया जो है वो यहीं पर, तकरीबन सारे के सारे यहीं पर आए, और सारा का सारा प्लॉट जो ह्यूमन ड्रामा का जो प्लॉट आपको अनफोल्ड होता हुआ नजर आता है और फिर आखिर में फोल्ड होता हुआ नजर आता है राइट, हदीसों की रोशनी में, वो सारा का सारा कहाँ पर हो रहा है, इसी एरिया में, शाम, इराक, फलस्तीन, उर्दुन, अरब है, सरजमीन अरब, यहाँ पे सरजमीन अरब हमारा मरकज। ठीक है, तो ये अगर दुनिया का मरकज है मिडल ईस्ट, तो इसका नॉर्थ किधर है, इसका शुमाल किधर है, इसका शुमाल यही है जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स वगैरह का एरिया कहलाता है। ठीक है, तो तहकीक करने वाले पहुंचे जी कि यहां पर याजूज और माजूज का वुकू है। ठीक है, अब यहां पर कौन सी कौमें रहती हैं, तो उन कौमों को जब स्टडी किया तो मजीद चीजें इनके सामने आई कि यहां पर कुछ ऐसी कौमें रहती हैं जो कि पहले जो है ना पहाड़ी दर्रों के अंदर रहती थी। ठीक है, पहाड़ी दर्रे यानी पहाड़ों के दरमियान के अंदर जो जो इलाके होते हैं ना, वहां पर ये कौमें रहती थी, और फिर ये कौमें जो है ना फिर वहां से निकल करके दुनिया के अंदर फैली है। कब फैली है, तकरीबन 1000 साल पहले वहां की रहने वाली कौमें जो हैं वो वहां से निकल करके दुनिया के दूसरे इलाकों में फैली। ठीक है, अच्छा एक और बात इन मुहक्कीकीन ने ये भी देखी कि वो जो उस इलाके में एक कौम रहती थी, शायद उसका नाम खजारिया बताते हैं, खजारिया। ठीक है, तो ये जो खजारिया किंगडम के जो लोग थे ना, यानी इनकी बाकायदा एक बादशाहत थी, इनका पूरा एक निज़ाम था, तो ये जो खजारिया कौम के लोग थे ना, इन्होंने तकरीबन 1000 साल पहले जो है वो बड़े पुरसरार अंदाज में, यानी कोई एग्जैक्ट रीजंस नज़र नहीं आते कि किसी ने बाकायदा तबलीग करी हो, लेकिन इन्होंने बहुत यानी पूरी पूरी की पूरी कौम ने एकदम से जो है ना वो यहूदियत कबूल कर ली। यहूदियत, ठीक है, दे ऑल कन्वर्टेड टू जुडाइज्म, ठीक है, इस खजारिया किंगडम के लोग जो कि इस इलाके के अंदर रहते थे, जॉर्जिया वगैरह के पहाड़ी दर्रों के अंदर जो लोग रहते थे, ठीक है। तो अब इन लोगों का जिन्होंने इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करी, तो इन लोगों का ख्याल है, यानी ये एक ख्याल है, दिस इज जस्ट वन थ्योरी, ठीक है ना, ये कोई हतमी बात नहीं कर रहे हैं, ना इस हाजिस का कोई उसके ऊपर 100% बिलीफ है, कोई ऐसा नहीं है। मैं एक चीज पढ़ी थी तो आपके सामने बता रहे हैं, बच्चों की क्लास में भी इस चीज को डिस्कस किया था जब हम पढ़ा रहे थे सूरह काफ उस टाइम पर, कि ये लोग जो है ना, ये जो यानी खजारिया किंगडम वाले थे, इन्होंने जुडेज्म को कबूल कर लिया। हालांकि यहूदियत जो है ना, ये बड़ा स्पेशल किस्म का मजहब है, इसके अंदर जो है ना वो असल यहूदी और नकल यहूदी, इनका बड़ा फर्क है इनके दरमियान, ठीक है। क्या कहते हैं, अगर वो टर्म आप में से किसी को याद हो मालूम हो, जेंटाइल्स, हाँ, एक होते हैं ओरिजिनल ज्यूज, जो कि बनी इसराइल की नस्ल से हैं, ठीक है ना, वो असल ज्यूज कहलाते हैं, और जो कन्वर्टेड लोग होते हैं ना, किसी दूसरे मजहब से यहाँ पे कन्वर्ट हो गए, या किसी दूसरे इलाके के लोग अपने आप को उन्होंने यहूदी करार दे दिया, ठीक है, वो असल यहूदी नहीं कहलाते, वो जेंटाइल्स कहलाते हैं, यानी यानी गैर असल यहूदी, ठीक है। तो अब ये लोग जो कन्वर्ट हुए, तो ये बनी इसराइल की नस्ल में से तो नहीं थे, याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से तो नहीं थे, तो ये जेंटाइल्स हैं, ठीक है। तो इन्होंने यहूदियत चूंकि कबूल कर ली ना, लेकिन इन्होंने बेसिकली क्या काम किया, कि इन्होंने जो असल यहूदी अकायद थे ना, उनसे हट करके अपना काम शुरू कर दिया, ठीक है। तो जो असल यहूदी है ना, वो इनके तौर तरीकों के हक में नहीं है, ठीक है ना, इन जेंटाइल यहूदियों के तौर तरीकों के हक में नहीं है, लेकिन चूंकि इनकी तादाद बहुत ज्यादा है, और जो असल यहूदी हैं उनकी तादाद असल में बहुत कम है, 10% कहते हैं रिसर्चर्स, ये कहते हैं कि इस वक्त दुनिया में जितने यहूदी मौजूद है ना, जो असल बनी इसराइल वाले यहूदी हैं, वो सिर्फ 10% है, सिर्फ 10%, और जो 90% लोग हैं ना, वो कन्वर्टेड ज्यूज हैं, जिनमें सबसे बड़ी तादाद इसी किस्म के लोगों की है, जो कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स या ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के लोग हैं असल में, ठीक है। अच्छा, तो कहते हैं कि ये जो आपने सुना होगा ये वर्ड ना, क्या कहते हैं उसको, ज़ायनिज्म, ज़ायनिज्म, ठीक है, ये यहूदियत की एक शक्ल है, ज़ायनिज्म इसको कहते हैं। तो ये क्या है, एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा, तो ये जो ज़ायनिज्म है ना, जिसको कहते हैं, जो कि यहूदियत की एक, एक, एक बड़ी मॉडर्न शक्ल है, ये असल यहूदियत नहीं है। ज़ायनिज्म क्या है कि दुनिया में यहूदियत का जो है ना वो कब्जा, ठीक है, पूरी दुनिया यहूदियत के कब्जे में आ जाए, ये है इनके गोल्स ज़ायनिस्ट के, ठीक है, असल यहूदियों के ये गोल्स नहीं है, ज़ायनिस्ट यहूदियों के ये गोल्स हैं, जिन्होंने फिर ये इसराइल का मुल्क भी बनाया। असल यहूदी तो इसके खिलाफ है, असल यहूदी जो है ना वो ये कहते हैं, यानी जो उनके कट्टर यहूदी, जो बिल्कुल अपने ऑर्थोडॉक्स किस्म के यहूदी, वो कहते हैं कि जी हमारा जो दीन है ना, ये तो ऐसा दीन है कि जिसका कि कोई मुल्क ही नहीं हो सकता, जिसका कोई मुल्क ही नहीं है, जब तक कि हमारा मसाया नहीं आ जाता, आखिरी नबी जब तक नहीं आ जाता, उस वक्त तक हमारा कोई कोई मुल्क नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये जो इसराइल का मुल्क बन गया ना, वो इसके खिलाफ है, क्योंकि अभी तक तो उनका मसाया आया नहीं, आखिरी नबी अलैहिस्सलाम का तो उन्होंने इनकार कर दिया ना, वो तो मानते ही नहीं नबी अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी, तो वो तो कहते हैं आखिरी नबी तो अभी आएगा, ठीक है, वो जब आएगा तब वो दुनिया में एक मुल्क बनाएगा, ठीक है, तो उसके आने से पहले कहां से मुल्क बन गया, तो वो इसराइल को तस्लीम नहीं करते, बल्कि उनमें से अक्सर तो इसराइल जाना ही पसंद नहीं करते, वो इसराइल के बाहर रहते हैं, कोई अमेरिका में रह रहा है, कोई यूरोप में रह रहा है, कोई ईरान में रह रहा है, ईरान में बहुत बड़ी तादाद है यहूदियों की, ठीक है, जो कि वहां बैठ करके आखिरी मसाया का इंतजार कर रहे हैं, जिसको दज्जाल कहते हैं हम लोग, है ना, वो ईरान के इलाके, इस्फहान के इलाके में ही आएगा, तो उनको भी पता है कि वो इस्फहान में आएगा, इस वजह से ईरान में सेटल्ड हैं सारे के सारे, ठीक है। तो जो ज़ायनिस्ट है ना, तो इन रिसर्चर्स ने कहा कि ये जो जायनिस्ट यहूदी है ना, ये कौन कौन से यहूदी हैं? कि वही यहूदी हैं जो कि 1,000 साल पहले कन्वर्ट हो गए यहूदियत में, ठीक है। और 1,000 साल पहले कन्वर्ट होने के बाद ये जो थे ना जायनिस्ट जो थे, ये पूरी दुनिया के अंदर फैल गए, आहिस्ता आहिस्ता करके ये फैल गए पूरी दुनिया में। और इन्होंने जो है ना वो दुनिया के अहम तरीन चीजों के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता करके कब्जा करना शुरू कर दिया है ना। और इस वक्त जो है वो ऐसा लगता है कि ये तकरीबन हर चीज के ऊपर कब्जा कर चुके हैं। तो ये है दरअसल याजूज माजूज। याजूज माजूज कौन है? ये लोग हैं जो खजारिया किंगडम के लोग थे, जॉर्जिया के उस एरिया में रहने वाले, जो कि सद्दे सिकंदरी तोड़ने के बाद वहां से बाहर निकले। फिर इन्होंने तालीम हासिल करनी शुरू करी है ना, पूरी उन्होंने अपने आप को एक सिविलाइज्ड फॉर्म बना लिया। पहले सिविलाइज नहीं थे, फिर उन्होंने सिविलाइज बना लिया अपने आप को, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के तमाम रिसोर्सेस के ऊपर काबिज हो गए। तो जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ना कि मिन कुल्ले हदबी यंसिलून है ना, कि ये बहुत बड़ी तादाद में निकलेंगे और ऐसे निकलेंगे जैसे हदबी यंसिलून। दरअसल इसका मतलब ये है कि ये लोग जो है ना वो पूरी दुनिया पे छा जाएंगे, ठीक है, और कब्जा कर लेंगे हर चीज के ऊपर, ठीक है, रिसोर्सेस पे कब्जा कर लेंगे, पानी के जखायर के ऊपर कब्जा कर लेंगे, वगैरह वगैरह है ना, इस तरह की चीज। अच्छा, ये सारी बातें तो भाई आप कह सकते हैं कि चलो जी, उन्होंने जो रिसर्च करी तो उनका ये ख्याल है ना, और गलत भी हो सकता है ना। हमें हम ना हमने कोई बहुत ज्यादा तहकीक करी भी नहीं, बस कहीं पढ़ लिया तो हमने हमें जरा थोड़ी सी समझ में आई बात, हो सकता है ऐसा हो, ठीक है। लेकिन पता है इस ये जो तफसीर है इस आयत की, ये लोग बयान करते हैं ना, ठीक है, कि सद्दे सिकंदरी टूट चुकी है, सद्दे सिकंदरी टूट चुकी है, ठीक है, और ये याजूज और माजूज जो हैं वो निकल चुके हैं, निकल चुके हैं, ठीक है। इसकी एक दलील जो है ना वो बड़ी जबरदस्त दलील, बड़ी जबरदस्त दलील, इस तफसीर की एक दलील बहुत जबरदस्त है। वो क्या, ठीक है, अगर आप में से किसी को याद हो पिछले लेक्चर में से तो उस दलील का, किसी को याद, वो क्या दलील है? बड़ी अजीब व गरीब किस्म की दलील है इस तफसीर की, के याजूज और माजूज खुल चुके हैं और बाहर निकल चुके हैं, अभी अभी फ्यूचर में नहीं निकलेंगे बल्कि निकल चुके हैं, ठीक है। वो क्या, वो दलील जो है ना वो ये है कि हमारे बर्रे सगीर पाक व हिंद के अंदर एक होते थे शायर, जिनको कहते हैं शायर मशरक, ठीक है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। उनकी जो शायरी है अजीब व गरीब किस्म की शायरी, कुछ उलमाए कराम तो यहां तक कहते हैं, आम लोग नहीं, उलमाए कराम कहते हैं कि कुरान मजीद की अगर शेरी तफसीर देखनी हो ना, शेर की हालत में तफसीर देखनी हो, अल्लामा इकबाल की शायरी पढ़ो, ठीक है। अजीब, अल्लाह ताला ने उनके दिल के अंदर ख्यालात डाले थे, और जिससे कि मतलब शायरी करते, शायरी करना तो पैदाइशी एक अल्लाह ताला की तरफ से वस्फ होता है। शेर जो शायर लोग होते हैं ना, ये जब बात करते हैं ना तो इनके मुंह से नसर नहीं निकलती बल्कि इनके मुंह से शेर ही निकलते हैं। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, शेर कह देना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भाई यू हैव अ बॉर्न एबिलिटी, आपने नसर करने के बजाय शेर में ही बात करनी है, ठीक है, ये इतना बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे हजारों लाखों शायर मौजूद है दुनिया के अंदर, आज भी मौजूद है, पहले भी थे। बात यह है अल्लामा इकबाल की कि वो जो मजमून बयान करते हैं ना, वो मजमून ऐसा है कि यानी बंदा दंग रह जाए, हैरान रह जाए कि ना ने इनके दिल में क्या बातें डाली ना, ठीक है। तो अल्लामा इकबाल का एक शेर है जिसमें उन्होंने कहा था, जाहिर है अल्लामा इकबाल का इंतकाल हुए भी आप कितने 75 साल तो पाकिस्तान बने हुए हो गए, और उनका इंतकाल जो है पाकिस्तान बनने से भी जो है वो 7-8 साल पहले हुआ था, 1942 में हुआ था, ठीक है। तो उन्होंने शेर कहा होगा उससे भी पहले, जाहिर है, ठीक है, तो आज से तकरीबन 100 साल पहले आप इमेजिन कर लें कि उन्होंने ये शेर कहा होगा शायद, ठीक है। उनका शेर है खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम, खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम, चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर हर्फे यंसिरु, चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर हर्फे यंसिरून। और ये हर्फ यंसिरून जो है ना वो याजूज और माजूज से मुताल्लिक एक ही जगह पे इस्तेमाल हुआ है पूरे कुरान मजीद में, ठीक है। तो अजीब उन्होंने जो बात लिखी ना, तो हमारा दिल तो यही जाता है कि भाई वो यही कहना चाह रहे हैं जो कि इस तहकीक वाले लोग जो है वो कहना चाह रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो अच्छा एक और जो जो दलील ये लोग जो देते हैं इसके ऊपर वो क्या थे, अभी वहीं से निकल गई एकदम से। हाँ पता नहीं क्या बात थी, तो जहन में नहीं आ रही। तो ये जो कहते हैं कि अब हम यहाँ से पढ़ भी लेते हैं, थोड़े से टाइम रह गया अब हमारे पास, कि मिन कुल्ल हदब यंसिलून, लफ्ज हदब जो है ना हर ऊंची जगह को कहते हैं। तो मिन कुल्ल हदब यंसिलून, लफ्ज हदब हर ऊंची जगह को कहा जाता है, वो बड़े पहाड़ हों या छोटे छोटे टीले। सूरह कहफ में जहां याजूज माजूज के महले वकू पर गुफ्तगू की गई है, इससे मालूम हो चुका है कि उनकी जगह दुनिया के शुमाली पहाड़ों के पीछे है, ठीक है। दुनिया के शुमाली पहाड़, तो वही हमने आपको बताया कि भाई जो जो कुरान और हदीस के हिसाब से जो जुमले जो जो दुनिया का तस्वुर है ना, वो साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ये सब नहीं, बल्कि जो मिडिल ईस्ट का एरिया है ना वो है, ठीक है। दे विल कम आउट इन वेव्स। हाँ वेव्स वाली बात भी थी कि ये वेव्स का जो है ना वो ऐसा है कि जैसे, हाँ जज़ाकअल्लाह आपने याद दिलाया ये बात, कि दुनिया के अंदर ये जो समंदर है ना, समंदरों की वेव्स होती हैं, ठीक है। तो वेव्स को अगर आप देखें, लहरों को अगर आप देखें, तो वो कैसी होती हैं? एक लहर आती है वो बहुत, यानी वो साहिल के ऊपर एक लहर आती है, फिर वो लहर जो होती है ना, फिर वो रिट्रीट कर जाती है, वो वापस चली जाती है समंदर के अंदर। फिर उसके बाद एक और लहर आती है, फिर वो वापस चली जाती है, फिर और लहर आती है, ठीक है। तो इस तरह से ना ये याजूज माजूज जो है ना, वो सिर्फ एक तरह से फिसलते हुए नहीं आएंगे, बल्कि एक इसकी एक एक इंटरप्रिटेशन ये भी है कि वो लहरों की शक्ल में आएंगे, ठीक है ना। एक दफा उनकी लहर आ गई, फिर वो गोया के बैठ जाएगी, झाग की तरह बैठ जाएगी, फिर जो है वो उनकी लहर आएगी, झाग की तरह बैठ जाएगी, और फिर शायद आखिरी जो लहर आए वो सबसे बड़ी लहर हो, ठीक है, जिसके अंदर फिर वो जमीन के अंदर सबसे ज्यादा फसाद मचाना शुरू करें। अच्छा हाँ एक और बात वो ये कि ये जो दुनिया में फसाद मचाने का कॉन्सेप्ट है, याजूज माजूज है ना वो कब्जा कर लेंगे और फसाद मचा देंगे, तो वो जो रिसर्चर्स है ना जिन्होंने ये सारी बातें करी हैं, तो वो ये कहते हैं कि ये जो जायनिस्ट है ना, इन्होंने दुनिया के अंदर फसाद मचाया हुआ है। कैसे मचाया हुआ है? बाकायदा तलवार से काट काट करके लोगों को फसाद नहीं मचाया हुआ, जैसे चंगेज खान ने और हलाकू खान ने मचाया था, बल्कि इन्होंने फसाद कैसे मचाया है? अपनी बैंकिंग इंडस्ट्री के जरिए से। बैंकिंग इंडस्ट्री, सूद को पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने आम कर दिया है, और सूद जो है ना ये फसाद की जड़ होती है, ठीक है। अच्छा दूसरा तरीका इनका फसाद मचाने का क्या है, कोई बताए अगर आप में से? सूद के बाद दूसरा तरीका जो कि यानी सूद ही की एक तरह से ऑफ शूट है, लेकिन उसकी शक्ल बड़ी डिफरेंट है, वो इन लोगों के हाथ में है, ज़ायनिस्ट यहूदियों के हाथ में, ठीक है, जिसकी वजह से दुनिया में इन्होंने फसाद ऐसा फैलाया है जो कि ऊपर से नजर भी आता है। सूद वाला फसाद जो है ना, वो आपको नीचे से नजर नहीं आता, ऊपर से नजर नहीं आता। सूद तो ये है कि भाई जिसने सूद ले लिया, जो सूद में फंसा हुआ है, तो उसकी जिंदगी खराब हो गई, ठीक है। ये फसाद नजर भी आता है, वो है बेहयाई का फसाद, बेहयाई जी। मीडिया तो उसके लिए एक 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 उसका उसका मीडियम है बेहयाई को फैलाने का, लेकिन इन लोगों ने जो है ना बेहयाई हर मीडियम को इस्तेमाल करते हुए, हर मीडिया आउटलेट को इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने बेहयाई फैलाई है। और ये फसाद, जो फसाद है ना बेहयाई वाला फसाद, ये सिर्फ सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर नहीं है, सिर्फ कारोबारी लेवल पर नहीं है, बल्कि ये वाला फसाद जो है वो घर के लेवल के ऊपर जाता है, घर के लेवल के ऊपर, है ना, जो कि मुआशरे की इकाई होती है, यूनिट होता है जो मुआशरे का, ठीक है। क्योंकि जब बेहयाई होती है तो है ना फिर क्या होता है, मियां उसके दिमाग में दूसरी चीजें बस जाती हैं, है ना, दूसरी औरतें बस जाती हैं उसके दिमाग के अंदर, और ऐसी ऐसी चीजें बस जाती हैं जो उसने देखी भी होती हैं बेहयाई के ये पोर्नोग्राफी चैनल्स के ऊपर या तस्वीरों के अंदर, या उसने म्यूजिक, म्यूजिक से बेहयाई फैलती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया ना म्यूजिक से जो है वो जिना के ख्याल फैलते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को इन्होंने हॉलीवुड के जरिए से और यूरोपियन इंडस्ट्रीज, जो जो फिल्म इंडस्ट्रीज हैं, म्यूजिक इंडस्ट्रीज हैं, ये सारी इनके कंट्रोल में, ठीक है। इंडिया के अंदर आपका बॉलीवुड और वगैरह, पाकिस्तान के अंदर जिसको लॉलीवुड कहते हैं, यानी कि क्या उल्टी सीधे नाम है सबके, ठीक है। तो इन लोगों ने इनके जरिए से म्यूजिक को और फिल्मों को और पोर्नोग्राफी को पूरी दुनिया में फैला दिया है, जिससे कि जो फसाद है ना ये घर के दर्जे तक पहुंच चुका है ना, घर लेवल तक पहुंच चुका है। तो हर वक्त आपको ऐसे वाकयात मिलते रहते हैं कि शादी खत्म हो गई, शोहर भाग गया या बीवी भाग गई, बच्चों को छोड़ दिया और यतीम हो गए और ये हो गया वो हो गया, यानी एक एक फसाद है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं। तो ये इन लोगों के कंट्रोल में ये सारी चीजें, ठीक है। खैर, तो अब ये तादाद में ज्यादा नहीं है, ये नहीं है कि ये क्रिश्चियन से ज्यादा है या इनकी तादाद मुसलमानों से ज्यादा है, नहीं, तादाद में ये कम है, लेकिन इनका फैलाया हुआ फसाद सारे फसादों से ज्यादा बड़ा फसाद है, ठीक है। अच्छा, अब हम ये पढ़ रहे थे कि सूरह काफ में जहाँ याजूज माजूज के महल वकूफ पर गुफ्तगू की गई है, इससे मालूम हो चुका है कि उनकी जगह दुनिया के शुमाली पहाड़ों के पीछे है, इसलिए खुरूज के वक्त उसी तरफ से ये पहाड़ी टीलों से उमड़ते हुए नजर आएंगे, ठीक है। अब ये जाहिरी तफसीर है जो कि ये भी 100% ये भी सही हो सकती है, ठीक है, यानी ये तो फ्यूचर की बात है ना, तो फ्यूचर का तो किसी को हाल मालूम नहीं होता है, ठीक है, कि एग्जैक्टली वो कैसे निकलेंगे। बहरहाल, इन्नकुम वमा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम। अच्छा, एक और चीज, हाँ सॉरी, जो रह गई थी और दो मिनट रह गए क्लास खत्म होने में, तो भी आपको बता दें वो क्या, कि जो ये जो तफसीर है ना कि जी ये याजूज माजूज निकल चुके और पूरी दुनिया में फैल चुके, इसकी वो एक और दलील पेश करते हैं। एक तो हमारे नजदीक जो सबसे बड़ी दलील है वो अल्लामा इकबाल का शेर, अजीब अल्लामा इकबाल ने यह बात की तो भाई कहीं से उनके दिल में अल्लाह ताला ने बात डाली होगी ना कि उन्होंने इतना जबरदस्त शेर का इस आयत की तफसीर पे, ठीक है। बहरहाल, इनकी एक और तफसीर है इस थ्योरी वाले लोगों की, वो क्या है, वो ये कहते हैं कि हरामुन अला करियतिन, ये जो अल्फाज है ना कुरान के, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बस्ती अपने यानी जिसको हमने हलाक कर दिया, कोई बस्ती जिसको हमने हलाक कर दिया, कोई इसे तर्जुमा नहीं करेंगे उर्दू जुबान में इसका, यानी इसका कॉन्सेप्ट, इसका इसकी जो समझ है ना, वो कोई बस्ती जिसको हमने हलाक कर दिया वो लौट नहीं सकती, ये नहीं है। बल्कि करियतन चूंकि एक नकिरा लफ्ज है और इसका तर्जुमा जो है ना वो एक बस्ती से भी किया जा सकता है, एक बस्ती, तो यहां पर एक खास बस्ती की बात हो रही है, ठीक है। हरामुन अला करियतन अहलक नाहा, जिसको हमने हलाक कर दिया, ठीक है, कि वो लौट नहीं सकती, यानी जहां जहां हमने उसको हलाक किया था ना वहां वो लौट नहीं सकती। अब इससे वो ये मुराद देते हैं, ये लोग जिन्होंने ये वाली थ्योरी बयान करी है, वो लोग ये मुराद देते हैं कि यहां पर मुराद है बनी इसराइल, ठीक है। बनी इसराइल जो है ना ये रहते थे फलस्तीन में, ठीक है ना, अल्लाह ताला ने उनको वहां पर हुकूमत अता फरमाई थी। इन लोगों ने जब अल्लाह की नाफरमानी करी तो अल्लाह ताला ने इनको हलाक कैसे किया, इनको ऐसे हलाक नहीं किया था जैसे कौम आद को हलाक किया कि पूरी की पूरी कौम हलाक हो गई ना, या कौम समूद को, या कौम लूत अलैहिस्सलाम को, या कौम सालेह अलैहिस्सलाम को जैसे हलाक किया, बनी इसराइल को वैसे हलाक नहीं किया अल्लाह ताला ने, है ना, कि चीख आई सारे के सारे मर गए, ऐसे नहीं हलाक किया, जलजला आया सारे के सारे मर गए, ऐसे हलाक नहीं किया, बल्कि इनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब कैसे आया था, इनके ऊपर अल्लाह ताला ने جو اس زمانے کے کافر تھے نا, جیسے بخت نصر, بخت نصر جیسے بادشاہوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا تھا, اور اس نے آ کر کے اب ان لوگوں کو بہت مارا تھا اور ان لوگوں کو فلسطین سے باہر نکال کے لے گیا تھا, ہے نا, بہت بڑی تعداد میں قتل کر دیے تھے اور جو بچ گئے تھے ان کو قیدی بنا کے لے گیا تھا. ٹھیک ہے, اب فلسطین کا جو 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 بستی ہے نا, فلسطین کا جو شہر ہے بیت المقدس, القدس بھی جس کو کہتے ہیں, جس کا ایک شہر القدس ہے, اصل چیز وہی ہے. تو یہ لوگ جو ہے نا, یہ لوگ وہاں پر حکمران بن کر کے اس وقت تک واپس نہیں آ سکتے جب تک یاجوج ماجوج نہ نکل جائیں, جب تک یاجوج ماجوج باہر نہ نکل آئیں اس وقت تک یہ لوگ واپس نہیں آ سکیں گے. ٹھیک ہے, تو اب یہودی القدس کے اندر واپس آئے کہ نہیں آئے؟ اس وقت اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو یہودی القدس کے اندر واپس آ چکے ہیں, ماضی میں یہ پہلے کبھی نہیں آئے تھے. پہلے القدس کے اوپر قابض کون تھا؟ پہلے القدس کے اوپر قابض کون تھا؟ عیسائی, رائٹ, عیسائی قابض تھے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمان قابض ہو گئے, ہے نا, ان کے اوپر, یعنی ان کو القدس مل گیا, چابیاں حوالے کر دیں عیسائیوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے. ٹھیک ہے نا, پھر مسلمان اس کے اوپر رہے جب تک کہ جو کروسیڈرز تھے انہوں نے پھر سے حملہ کر کے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا. عیسائی, وہ بھی عیسائی تھے, یہودی نہیں تھے, وہ عیسائی تھے, صلیبی جنگ والے لوگ, ہے نا. پھر ان کے پاس جو ہے وہ بڑے سالوں تک جو ہے وہ القدس رہا. پھر حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس کے اوپر حملہ کر کے پھر اس کو واپس لے لیا. تو یہ کس کے پاس واپس آ گیا؟ مسلمانوں کے پاس واپس آ گیا, ہے نا. اور پھر یہ مسلمانوں ہی کے پاس رہا انٹل 1948. اسرائیل کب بنا؟ 1948 میں اراؤنڈ, ہے نا. ویسے تو فرسٹ ورلڈ وار سے ہی سارا کام شروع ہو چکا تھا. ٹھیک ہے, اب جب یہ لوگ یہودی اسرائیل میں, یعنی اس جگہ پہ واپس آ گئے, القدس میں واپس آ گئے نا, تو اس آیت سے یہ دلیل ملتی ہے کہ چونکہ یہودی القدس میں واپس آ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کھل چکے ہیں, پہلے ہی کھل چکے ہیں جبھی تو یہ واپس آئے. ٹھیک ہے, اور اس کی دلیل علامہ اقبال کے شعر سے بھی ملتی ہے, عجیب و غریب قسم طریقے سے, ہے نا. یہ ایک تھیوری تھی جو آپ کے سامنے اس کلاس کے اندر ہم نے بیان کرنی تھی. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اس کے اوپر 100% بلیو کرتے, یہ بالکل بھی ایسا نہیں, بس ایک جگہ پڑھا تھا آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے جی, چلے, بہرحال کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا, تو باقی باتیں آئندہ انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اصل یہودیوں کا نام بتا دیں, اصل یہودیوں کو کوئی نام نہیں ہے. جو نقل یہودی ہوتے ہیں نا ان کو جینٹائلز کہتے ہیں, جینٹائلز, اور اصل یہودی تو بس یہودی ہی ہے. ٹھیک ہے, چلے.